एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथसार में स्वागत। आज हम एक बहुत ही दमदार उपन्यास पर बात करने वाले हैं, शेरी रेनोल्ड्स का द रैप्चर ऑफ कैनन।
हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसी कहानी है जो आपको अंदर तक मतलब सोचने पर मजबूर कर देती है। आस्था, कट्टरता और निजी आज़ादी के बीच का जो तनाव है उसे बहुत गहराई से दिखाती है।
और लेखिका शेरी रेनोल्ड्स, उनकी आवाज़ भी बहुत मजबूत है, खासकर दक्षिणी अमेरिकी साहित्य में।
सही कहा, वो ग्रामीण वर्जीनिया में पली बढ़ी तो उन कट्टर धार्मिक समुदायों को उन्होंने करीब से देखा होगा।
और उनकी लेखनी में वो बेबाकी दिखती है, लैंगिकता, पहचान, आस्था, इन सब मुश्किल मुद्दों पर।
ये किताब आई थी 1995 में और फिर ओपराज बुक क्लब में आने के बाद तो काफी चर्चा हुई इसकी।
हाँ, और वो समय भी ऐसा था जब अमेरिका में मतलब धर्म, नैतिकता, इवांजेलिकल ईसाइयत, इन सब पर काफी बहस चल रही थी। इसे दक्षिणी गॉथिक भी कहते ना, मतलब वो स्टाइल जिसमें माहौल थोड़ा रहस्यमयी, थोड़ा डरावना सा हो।
बिल्कुल, कहानी का सेटअप ही ऐसा है, एक बिल्कुल अलग थलग समुदाय, चर्च ऑफ फायर एंड ब्रिमस्टोन एंड गॉड्स ऑल माइटी बैप्टाइजिंग विंड, नाम ही देखे कितना नाटकीय है।
हाँ, और ये लोग मतलब बाइबल को बिल्कुल अक्षरशः मानते हैं।
एकदम
आधुनिक चीजें जैसे बिजली, दवाइयां,
हाँ।
सब शक के दायरे में। बाहरी दुनिया तो जैसे पाप का घर हो उनके लिए।
सोचिए जरा, ऐसी जगह जहां मुखिया, जो खुद को ईश्वर का दूत कहता है, उसी का हुक्म चलता हो।
और आस्था साबित करने के लिए वो जहरीले सांपों को हाथ में लेना, उफ, ये सब रस्में थी वहां।
तो आज हम इसी बंद दुनिया में झांकेंगे, है ना, किरदारों के जज्बातों को समझेंगे, कहानी के मोड़ और संघर्ष, और देखेंगे कि ये आज भी हमें क्या सिखाती है।
हाँ, तो कहानी की धुरी है 15 साल की नीना, हफ, वही हमें ये पूरी कहानी सुनाती है।
अच्छा, फर्स्ट पर्सन नरेटर। हाँ, और शुरू में तो वो बिल्कुल आदर्श सदस्य है समुदाय की, अपने दादा, ग्रैंडपा, हरमन जो मुखिया हैं, और ईश्वर, सबके प्रति पूरी तरह समर्पित।
ग्रैंडपा हरमन, ये किरदार काफी अहम है, जाहिर है करिश्माई पर उतने ही सख्त।
बिल्कुल, उनका कहा ही कानून, नीना की जिंदगी बस प्रार्थना, रोज के काम और ग्रैंडपा हरमन के उपदेशों के इर्द गिर्द ही घूमती है।
और उसका एक प्रार्थना साथी भी है, जेम्स।
हाँ जेम्स, ये प्रार्थना साथी का कॉन्सेप्ट भी दिलचस्प है, मतलब निजी रिश्तों पर भी समुदाय का नियंत्रण।
और यहीं से मुझे लगता है कहानी में पहला असली तनाव शुरू होता है।
सही, क्योंकि नीना और जेम्स के बीच जो प्रार्थना की साझेदारी है वो धीरे धीरे एक गहरे लगाव में, किशोर प्रेम में बदल जाती है।
स्वाभाविक है उस उम्र में।
हाँ बिल्कुल, वो छिप छिप कर मिलने लगते हैं और फिर वो अपनी भावनाओं में बहकर वो सीमा लांघ जाते हैं जो उनके समुदाय ने तय की थी, मतलब उनके बीच एक यौन संबंध बन जाता है।
लेकिन उनके समुदाय के लिए ये तो भयानक पाप था।
भयानक,
और इसका नतीजा भी बहुत दुखद होता है। दोनों अपराध बोध से भर जाते हैं, ईश्वर सजा देगा, ये डर उन्हें खाए जाता है।
जेम्स शायद ये बर्दाश्त नहीं कर पाता।
नहीं, वो इस मानसिक पीड़ा को, इस बोझ को झेल नहीं पाता, और एक दिन चर्च की प्रार्थना सभा में खुद को जैसे शुद्ध करने की कोशिश में वो जानबूझकर एक जहरीले रैटल स्नेक से खुद को कटवा लेता है।
ओह, ये तो बहुत ही त्रासद है।
हाँ, और उसकी मौत नीना के लिए एक भयानक सदमा तो है ही, साथ ही उसके मन में वो जो ईश्वर की सजा का डर था वो और पक्ता हो जाता है।
ये घटना दिखाती है कि कैसे वो कट्टर माहौल और आस्था का विकृत रूप कितना खतरनाक हो सकता है।
है ना, मतलब मासूम भावनाओं को ऐसा पाप बना देना कि कोई जान ही दे दे।
बिल्कुल, और यहाँ से नीना का असल संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि जेम्स की मौत के फौरन बाद उसे पता चलता है कि वो
गर्भवती है,
और उस समुदाय में तो ये सोचा भी नहीं जा सकता था, अविवाहित माँ बनना बिल्कुल सजा बहिष्कार हो सकती थी, या शायद उससे भी बुरा कुछ। वो बेचारी महीनों तक ये बात छुपाती है, लेकिन कब तक छुपाती?
आखिरकार उसे ग्रैंडपा हरमन को बताना पड़ता होगा।
हाँ, वो मान लेती है कि अब उसे सजा मिलेगी, वो तैयार है उसके लिए।
लेकिन ग्रैंडपा हरमन वो कुछ और ही करते हैं, है ना, यही उनका असली रूप सामने आता है।
एकदम, सजा देने के बजाय उन्हें इसमें एक मौका नजर आता है अपनी सत्ता को और मजबूत करने का। ये धार्मिक पाखंड का, सत्ता के गलत इस्तेमाल का, क्या कहूँ, बहुत ही तीखा चित्रण है।
क्या वो जानबूझकर ये सब करते हैं, या कहीं ना कहीं अपने ही बुने जाल में खुद भी थोड़ा यकीन करने लगते हैं?
ये सवाल उपन्यास छोड़ देता है पाठक के लिए। मतलब हरमन नीना को सबसे अलग कर देते हैं और फिर समुदाय में ऐलान करते हैं कि उन्हें ईश्वर से संदेश मिला है।
क्या संदेश?
कि नीना कुंवारी है और उसका बच्चा पवित्र रूप से गर्भ में आया है। वो एक नया मसीहा है।
अरे बाप रे, और लोग मान लेते हैं?
हाँ, वो समुदाय तो हरमन के हर शब्द को ईश्वर का हुक्म मानता आया है। सब लोग जश्न मनाने लगते हैं, पूजा करने लगते हैं।
मतलब नीना जो कुछ देर पहले तक पापी थी, वो अचानक संत बन जाती है।
हाँ, लेकिन ये संत होना भी एक कैद है, एक सुनहरी कैद। वो अकेली है, 2400 घंटे उस पे नजर रखी जा रही है, उसे वो भूमिका निभानी पड़ रही है जो वो है नहीं।
और अंदर ही अंदर वो जेम्स की मौत के गम और इस भयानक झूठ के बोझ से दबी जा रही होगी।
बिल्कुल, फंसा हुआ महसूस करती है। सच बोलें तो उसका और बच्चे का जीना मुश्किल, और झूठ में जिए तो उसकी आत्मा मर रही है। जैसा वो बाद में सोचती है कि ग्रैंडपा कह रहे थे बच्चा उद्धार करता है, पर वो जानती थी ये झूठ है, फिर भी उसने होने दिया डर के मारे।
उफ, फिर बच्चे का जन्म होता है, कैनन।
हाँ, कैनन। और यहाँ कहानी में एक और परत जुड़ती है। बच्चा इंटरसेक्स पैदा होता है, मतलब उसके जननांग ना पूरी तरह पुरुष के हैं ना महिला के।
ये तो समुदाय की सीधी साधी सोच के लिए एक और चुनौती हो गई।
हाँ, लेकिन ग्रैंडपा हमन फिर इसे अपने हक में इस्तेमाल कर लेते हैं।
कैसे?
वो ऐलान करते हैं कि बच्चे का ये अनोखापन ही उसके ईश्वर का रूप होने का सबूत है। वो कहते हैं ये पुरुष भी है और महिला भी, जैसे फरिश्ते होते हैं।
कमाल है, मतलब हर चीज को वो अपने मतलब के लिए तोड़ मरोड़ लेते हैं।
हाँ, और फिर वो कैनन को लेकर चमत्कार दिखाने लगते हैं, उसे एक धार्मिक प्रतीक बना देते हैं ताकि उनकी अपनी पकड़ और मजबूत हो। यहीं पर नीना की दादी मामा का किरदार भी सामने आता है, जो बेचारी फंसी हुई है। पति का हुक्म, समुदाय का दबाव, बच्चे के लिए प्यार, सब में उलझी हुई।
और नीना ये सब देख रही है, अपने बेटे को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल होते हुए।
ये उसके लिए बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। यहीं पर उसका जो माँ का प्यार है, वो उसकी सालों की धार्मिक सीख पर हावी हो जाता है।
उसे समझ आ जाता है कि ये सब गलत है।
हाँ, उसे साफ दिखने लगता है कि ये झूठ उसके बच्चे को बर्बाद कर देगा। वो महसूस करती है कि लोग कैनन से इसलिए प्यार नहीं करते कि वो एक बच्चा है, बल्कि इसलिए कि वो एक चमत्कार है, और ऐसा प्यार बच्चे के लिए जहर है।
ये एहसास उसे हिम्मत देता है ना?
बिल्कुल, मातृत्व की शक्ति। उसे समझ आता है कि असली आस्था ग्रैंडपा के बनाए नियमों में नहीं, बल्कि अपने बच्चे की सुरक्षा में है, प्रेम में है, और यहीं से उसमें विद्रोह करने की ताकत आती है।
तो वो भागने का फैसला करती है।
हाँ, और इसमें उसकी माँ, जो अब तक खामोश दर्शक बनी हुई थी, वो चुपके से उसकी मदद करती है, कुछ पैसे देती है।
माँ की भूमिका भी अहम है। गुर्तो,
हाँ, दबी हुई ही सही, पर अहम। भागने से ठीक पहले नीना चर्च में सबके सामने, सीधे सीधे नहीं पर इशारों में, ग्रैंडपा हरमन के अधिकार पर सवाल उठा देती है। लोगों के मन में शक का बीज बो देती है।
अच्छा, ये भी हिम्मत का काम है।
हाँ, और फिर रात के अंधेरे में वो कैनन को लेकर भाग जाती है, उस दुनिया से दूर जिसने उसे बनाया भी और कैद भी किया।
कहानी का अंत कैसा है? क्या वो किसी सुरक्षित जगह पहुंचते हैं?
नहीं, अंत खुला हुआ है, कोई पक्का समाधान नहीं है। बस वो एक बस में है, नीना और कैनन, उस बाहरी दुनिया की तरफ जा रहे हैं जिससे उसे हमेशा डराया गया था।
उसके पास पैसे कम हैं, कोई योजना नहीं, बाहरी दुनिया की समझ नहीं,
कुछ नहीं। लेकिन वो आज़ाद है, उसने अपनी कहानी वापस पा ली है, अपना शरीर, अपना बच्चा, सब पर उसका अपना हक है। सफ़र अभी शुरू हुआ है। ये अंत शायद यही कहता है कि आज़ादी मंजिल में नहीं, उस पहले कदम में है।
बहुत गहमा। चलिए अब ज़रा इसके मुख्य विषयों पर बात करें। सबसे बड़ा तो यही लगता है, आस्था बनाम कट्टरता।
बिल्कुल, फेथ वर्सेस डॉग्मा। रेनॉल्ड्स बहुत साफ दिखाती हैं कि नीना की जो अपनी निजी आस्था है, जिसमें प्रेम है, क्षमा है, वो ग्रैंडपा हरमन की थोपी हुई सजा वाली कठोर व्यवस्था से कितनी अलग है।
उपन्यास जैसे कह रहा हो कि जब धर्म सिर्फ नियंत्रण का तरीका बन जाता है तो वो आत्मा को मार देता है।
हाँ, और ये सवाल उठता है कि सच्ची आध्यात्मिकता क्या है, नियमों में या करुणा में।
दूसरा अहम मुद्दा है महिला कामुकता का, कैसे उसे दबाया जाता है।
हाँ, और कैसे नीना उसे वापस हासिल करती है। उसका अपने पाप से जन्मे बच्चे को बचाना ही उसके शरीर और पहचान को दोबारा पाने का जरिया बन जाता है। जिसे पाप कहा गया, उसी से जुड़ी मातृत्व की शक्ति उसे मुक्ति दिलाती है। ये बहुत शक्तिशाली है।
और पाखंड और सत्ता का दुरुपयोग तो ग्रैंडपा हरमन के किरदार में साफ दिखता है। ये दिखाता है कि कैसे धर्म की आड़ में शोषण होता है। ये तो आज भी बहुत प्रासंगिक है ना?
बिल्कुल, दुनिया भर में देखते हैं हम ये। और फिर मातृत्व की शक्ति, वो कैसे इंसान को बदल सकती है। नीना के लिए तो ये बदलाव की कुंजी ही बन जाती है। कैनन के लिए उसका प्यार ही उसे पूरी व्यवस्था से टकराने की हिम्मत देता है।
एक और चीज जो मुझे लगी वो है व्यक्तिगत अंतरात्मा और समुदाय के अधिकार के बीच का टकराव।
हाँ, इंडिविजुअल कॉन्शियंस वर्सेस कम्युनिटी अथॉरिटी। नीना की कहानी यही दिखाती है कि कभी कभी सही रास्ते पर चलने के लिए गलत व्यवस्था से अलग होना ही पड़ता है। जैसा वो सोचती भी है कि समुदाय छोड़ने से वो कम ईसाई नहीं बनेगी, शायद ज्यादा बन जाएगी।
ये सच्ची आस्था को संस्था से ऊपर रखता है।
हाँ, और क्षमा की बात भी है। नीना धीरे धीरे समझती है कि माफी किसी बाहरी नियम से नहीं मिलती, वो प्रेम और समझ से आती है। वो जेम्स के लिए अपने प्यार और ईश्वर के प्यार की तुलना करती है।
हाँ, वो कहती है कि पहले सोचती थी ईश्वर का प्यार ग्रैंडपा जैसा है जिसे कमाना पड़ता है, पर अब लगता है ईश्वर का प्यार वैसा है जैसा वो जेम्स से करती थी, जिसे रोक नहीं सकते और जो गलती करने से खत्म नहीं होता।
ये ईश्वर के प्रेम की कितनी मानवीय और क्रांतिकारी सोच है।
इन सब विचारों को हम तक पहुंचाने में लेखिका की शैली का भी बड़ा हाथ है। वो जो फर्स्ट पर्सन नरेशन है नीना की आवाज में,
हाँ, उससे हम सीधे नीना के मन में उतर जाते हैं। उसका डर, उसकी उलझन, उसकी उम्मीदें सब महसूस करते हैं।
और नीना की आवाज भी बदलती है कहानी के साथ। शुरू में सहमी हुई, बाद में ज्यादा साफ, ज्यादा मजबूत।
बिल्कुल, और उसमें एक सादगी है पर गहराई भी। जैसे कोई बहुत पढ़ा लिखा ना हो पर जिसने जिंदगी को और भावनाओं को बहुत करीब से समझा हो, और वो जो स्थानीय बोली का इस्तेमाल है उससे कहानी और असली लगती है।
प्रतीक भी बहुत हैं इसमें, धार्मिक प्रतीक, जैसे वो सांप।
हाँ, सांप यहाँ सिर्फ बाइबल वाले प्रलोभन का प्रतीक नहीं है, वो आस्था की एक खतरनाक विकृत परीक्षा भी है, और जेम्स के लिए तो वो आत्मदंड का जरिया बन गया।
और वो प्रार्थना के कपड़े जिन्हें नीना खुद बनाती थी।
हाँ, वो शुरू में उसकी भक्ति दिखाते हैं, पर जब वो उन्हें छोड़कर भागती है तो वो उसकी पुरानी पहचान से आज़ादी का प्रतीक बन जाते हैं। और कैनन का नाम वो बाइबल के वादा किए गए देश की तरफ इशारा करता है, एक नई शुरुआत की उम्मीद।
प्रकृति के चित्र भी हैं जो समुदाय के घुटन भरे माहौल के उलट कुछ ताजगी लाते हैं।
हाँ, और विडंबना तो भरी पड़ी है, मतलब जो वो कहते हैं और जो वो करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क। जैसा नीना कहती है, शास्त्र कहता है न्याय मत करो, पर लगता है हम हमेशा न्याय ही करते रहे।
तो कुल मिलाकर ये उपन्यास पाठक पर बहुत गहरा असर छोड़ता है। नीना की हिम्मत, उसका संघर्ष, पाठक उससे जुड़ जाता है।
हाँ, आप उसके साथ घुटन महसूस करते हैं, और जब वो आजाद होती है तो आपको भी राहत मिलती है।
और ये आस्था के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। सच्ची आस्था क्या है? कट्टरता कितनी खतरनाक हो सकती है? ये सवाल कहानी खत्म होने के बाद भी साथ रहते हैं, बिना किसी आसान जवाब के।
बिल्कुल, ये संगठित धर्म और निजी आध्यात्मिकता के बीच के फर्क को समझने में मदद करता है। कैसे एक नियंत्रण पर आधारित हो सकता है और दूसरा करुणा पर।
और महिला कामुकता, शरीर पर अधिकार, ये मुद्दे तो आज भी उतने ही बल्कि शायद ज्यादा प्रासंगिक हैं।
हाँ, जब हम देखते हैं कि कैसे आज भी धर्म का इस्तेमाल महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए होता है।
शायद सबसे बड़ी बात यह है कि ये उपन्यास हमें सिखाता है कि नैतिक साहस क्या होता है। वो आंख बंद करके किसी की बात मान लेना नहीं है,
बल्कि सवाल उठाना है, अपनी अंतरात्मा की सुनना है, भले ही रास्ता मुश्किल हो।
अंत में ये कहानी यही याद दिलाती है कि अपनी सच्चाई को खोजना, उस पर टिके रहना कितना कठिन और कितना जरूरी है, खासकर तब जब आपकी सच्चाई दुनिया से अलग हो।
और ये भी कि प्रेम, खास तौर पर माँ का प्यार, वो सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, सबसे मजबूत दीवारों को भी गिरा सकता है। ये सिर्फ एक भावना नहीं, एक क्रांतिकारी शक्ति है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए प्रस्तुत है एकत्र फाउंडेशन द्वारा।